आप लोगों को भी अवसर दिया हूं, मैं भी खुद पूछूंगा। विरूप दास जी, किस ग्रंथ की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु की। भक्ति रसामृत सिंधु में किस विषय की चर्चा हो रही है, किस विषय को हम लोग लिए हैं? भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से किस विषय को अभी कल हम लोग पढ़ रहे थे? दयालु साधन भक्ति, ठीक। भक्ति रसामृत सिंधु से हम लोग साधन भक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं। साधन भक्ति की संख्या अनेक हो सकती है, लेकिन रूप गोस्वामी कितने साधन भक्ति का उल्लेख कर रहे हैं? 64। साधन भक्ति दो भाग किया गया है, कौन कौन? वैधि और रागानुगा। तो वैधि भक्ति के कितने अंग हैं श्रीनिवास? 64 अंग, ठीक। 64 अंग में कुछ अंग को भक्ति का प्रवेश द्वार कहा गया, दरवाजा कहा गया। इंदुलेखा बतलाओ कितने अंग को दरवाजा कहा गया है? 20 अंग को। 20 अंग का विभाजन दो खंड में किया गया है। हाँ बोलिए, क्या क्या है वो दो खंड? जगत पालक बोलो, थोड़ा सा सुधार करके कौन बोलेगा? ठीक, समझ गए। 10 प्रवृत्ति और 10 प्रवृत्ति को प्रारंभ रूप बता। जो 10 प्रवृत्ति है इसको प्रारंभिक भक्ति कहा गया है। रूप गोस्वामी का शब्द है प्रारंभ रूपता। इसी 10 से भक्ति प्रारंभ होती है, लेकिन इस 10 में भी 3 बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 का नाम श्रीवास श्रीनिवास, काहे को हाथ उठा रहे हैं? अभी तो प्रश्न पूछा नहीं, नाम बतलाने के लिए। बतलाइए, ठीक है, नाम बतलाइए। अच्छा, ये 3 भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। ये 20 प्रकार की भक्ति का गणना किया जा रहा है, तो इसी से भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस 20 भक्ति का जितना अच्छा ढंग से निष्पादन करेंगे, अभ्यास करेंगे, हमारी भक्ति उतनी ही निर्बाध चलेगी और उन्नति को प्राप्त करेगी। तो ये सब बात वैधि भक्ति के विषय में समझना चाहिए। साधन भक्ति, वैधि भक्ति। अब 64 भक्ति का एक एक करके विचार किया जाएगा। तो प्रथम है गुरु पादाश्रय। गुरु का आश्रय स्वीकार करना। गुरु का आश्रय स्वीकार करना ये क्रिया है, तो इसमें कितने व्यक्ति होंगे? 2। एक गुरु होगा और एक शिष्य होगा। तो गुरु का आश्रय लेना है तो शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए और गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये दो चीज विचारणीय है। गुरु का आश्रय लेने जा रहे हैं तो शिष्य की भी योग्यता निर्धारित है। श्लोक निकालो, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण उपसमाश्रय। इस श्लोक में, यह श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रंथ से आप लोग देख लीजिएगा, समझने की जरूरत है। तो इस श्लोक में पहला शब्द क्या आ रहा है, तस्मात्। क्या इसका अर्थ होता है, इसलिए। तुरंत प्रश्न में पूछूंगा, किस लिए? ये आप कह रहे हैं कि इसलिए, प्रश्न होगा ना किस लिए आए, अरे गुरु तो करना चाहिए, किस लिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तम, वो तो ठीक है, जो उत्तम श्रेय के जिज्ञासु है वो तो इसलिए गुरु प्रपद्येत, वह गुरु स्वीकार करे। लेकिन ये उत्तम श्रेय की जिज्ञासा की क्या जरूरत पड़ गई? भौतिक जगत में परेशानियां आती हैं, जब इसका अनुभूति होने लगे कि संसार के जीवन से हम सुखी नहीं हो सकते। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न उठाया गया है, नव जोगेश्वर से प्रश्न कर रहे हैं निमि महाराज कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए दुरत्या ऐश्वरी माया, भगवान की माया जिसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन स्थूल दिया एकदम कम पढ़ा लिखा मोटे बुद्धि का व्यक्ति भी अंजह बहुत आसानी से माया को तर जाए, तो इस विषय में आप बोलिए। तो माया के पार करने के लिए वो उपाय बतलाए हैं, तो उसका तीन स्तर है। तो यह मध्य क्या है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु का शरण ग्रहण करें। लेकिन उसके पहले अब शिष्य की क्या योग्यता चाहिए, तो कह रहे हैं कि कर्मैणा रभमाणा न दुखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासं मिथुनी चारिणां निर्णा। गुरु का आश्रय लेना है तो उसके पहले अनुभव हो जाना चाहिए, यह दिखना चाहिए कि संसार के लोग जो जोड़ी बांध करके कार्य कर रहे हैं, मिथुनी चारिणा, संसार का सर्वे करेंगे तो अधिकांश लोग जोड़ी में है। यहाँ सर्वे फेल कर सकता है। हम संसार का कह रहे हैं, भगवान के धाम का नहीं। मिथुनी चारिणा ये जोड़ी में है, हो सकता है कि 99% भी क्रॉस कर जाए, जोड़ी में है। और किस लिए जोड़ी में व्यवहार उनका चल रहा है, दुख हत्य सुखाए च, दुख को एकदम नष्ट करना चाहते हैं और सुख को बिटोरना चाहते हैं, यही उद्देश्य है। और कर्मणा रभमाणा नाम, विविध प्रकार के कर्म कर रहे हैं, कोई ऑफिस में कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, दोनों बड़ा मिल करके कर रहे हैं। आप देखिए, व्याख्या करने का समय नहीं है, तो बहुत अंतर्दृष्टि विकसित होती है व्याख्या से, लेकिन पश्चित पाक विपर्या से दोनों लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट उल्टा हो रहा है, इसको दर्शन करें। वे कई एक पीढ़ी से लगे हुए हैं, कई एक पीढ़ी आ गया जोड़ी बांध करके, इनके संसार के समस्या को या कम से कम अपने परिवार की समस्या को सब दूर कर देंगे। दुख हत्य सुखाए और सुख प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि पश्चित पाक विपर्यास। तो शिष्य की योग्यता है कि सबसे पहले उसको अनुभव होना चाहिए कि संसार के जीवन से हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब यह अनुभव होने लगे तब तस्मात गुरुम प्रपद्यता, और भी जो इस संसार की स्थिति है, सुख नहीं मिल रहा है धन से, बल्कि और वैर बढ़ रहा है, तो ठीक यही स्थिति स्वर्ग इत्यादि की भी है। तो जब ऐसा अनुभव होने लगे कि ना संसार के शैली से तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, सांसारिक जीवन शैली से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब जिज्ञासु श्रेय उत्तम, तब भाई सुख का साधन क्या हो सकता है। अब यह मन में जिज्ञासा आने लगे तो तस्मात गुरु प्रपद्यत, तब गुरु का शरण स्वीकार करे। तो गुरु शरणागति के पहले की योग्यता है कि इस संसार के प्रति उदासीन होना चाहिए, संसार में हे बुद्धि होना चाहिए। जब तक हे बुद्धि नहीं है, संसार से निर्वीण नहीं है, अब कोई कहे कि ये क्या भोग, मतलब छिन्न नहीं है, उदासीन नहीं है, हे बुद्धि नहीं है, तब तक शिष्य की योग्यता नहीं है कि वो गुरु के पास जाए। अरे ये आपको ऐसा लग रहा है कि हम अपने बिजनेस से सुखी हो जाएंगे, संसार से ही सुखी हो जाएंगे, तो गुरु की क्या जरूरत है, वो भारी काउंसलिंग आपको दे देंगे बिजनेस में। कुछ लोग कहते हैं कि काउंसलिंग दे या ना, आशीर्वाद से तो बिजनेस बढ़ेगा ना। तो ठीक है, या ठीक है, आशीर्वाद से भी बहुत कार्य हो जाता है, लेकिन माया नहीं पार करेंगे, बिजनेस बढ़ जाएगा। तो हमारे कहने का आशय इतना ही है कि गुरु स्वीकार करने की बात आ रही है तो शिष्य की कुछ योग्यता है, और शिष्य की योग्यता यह है कि संसारिक जीवन के प्रति उसको उदासीनता होना चाहिए, वहां से विमुखता होना चाहिए, वहां से निराशा होनी चाहिए। जब तक संसारिक जीवन से निराश नहीं है, जब तक इसमें है बुद्धि नहीं है, तब तक गुरु से बहुत लाभ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवतम के उक्ति है, नतस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात बरीयसीरपि वाचः समासन, उस व्यक्ति को तत्व का ज्ञान श्रेष्ठ वचन उपनिषद भी नहीं करा सकते। किस व्यक्ति को, स्वप्ने निरुक्त्या गृह में दिसौख्यम न जस हेयानुमित स्वयं स्यात्। जिस व्यक्ति को गृह में भी सौख्यम गृहस्थी के सुख में अपने से हे बुद्धि ना है। अरे भाई ध्रुव कहेगा कैसे अपने से हो जाएगा, अभी तो अस्तर ही नहीं, स्वप्ने निरुक्त्या। एक स्वप्न के दृष्टांत से, सपना में भी व्यक्ति बहुत बहुत पद प्राप्त कर जाता है, सुख प्राप्त कर जाता है, उसमें महत्व बुद्धि होता है, मन में है विचार ना यह तो सपना है, वो भी तो अच्छा ही लगता है ना, बुरा नहीं लगता है। तो जैसे सपना में तो कोई ज्ञान सपना के विषय में अपने से आप हे बुद्धि कर लेते हैं ना, कोई सेमिनार नहीं अटेंड करना पड़ता है, कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है, अपने से विचार आ जाता है कि सपना है। तो जैसे सपने के प्रति हे बुद्धि अपने से है, वैसे ही संसार के सुख के प्रति हे बुद्धि जब तक नहीं आ जाए तब तक उसको उपनिषद भी तत्व का ज्ञान नहीं करा सकता। चाणक्य पंडित इस बात को कहते हैं कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र किम करिष्यति, जिसको कुछ अपना विवेक नहीं है तो शास्त्र उसको क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीन से दर्पण किम करिष्यति, जिसका दोनों आंख फूटा हुआ है दर्पण किस काम का है। तो समझ रहे हैं, भक्ति में प्रवेश करने के लिए थोड़े से वैराग्य की जरूरत है। जब तक वैराग्य नहीं है कैसे संसार से विमुख होंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है, लेकिन भक्ति में प्रवेश करने के लिए थोड़ा सा वैराग्य अति आवश्यक है। शिष्य की योग्यता है कि उसे संसार के प्रति उदासीन होना चाहिए, संसार से कुछ विमुख होना चाहिए, संसार में हे बुद्धि होना चाहिए, उसको यह अनुभव होना चाहिए कि संसारिक जीवन से हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब जब ऐसी भावना आने लगे तो स्वाभाविक ही मन में जिज्ञासा कैसे सुख मिलेगा। तो तस्मात गुरुम प्रपद्यता, शिष्य की योग्यता हो गई। अरे भैया गुरु की योग्यता समझेंगे किस गुरु को शरण में जाए ये भी जानना होगा ना, गुरु तो बहुत है। तो गुरु के विषय में क्या कह रहे हैं कि शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उप समाश्रय, गुरु के विषय में तीन बात कह रहे हैं, उसे शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। निष्णात मतलब एक्सपर्ट, वेद शास्त्र का उसे खूब अच्छा से ज्ञान होना चाहिए। श्रीधर स्वामी सर न्यायतः विद्वान होना चाहिए, न्यायतः मतलब लॉजिकली। जब वेद शास्त्र का खूब अच्छा जानकारी रखेगा तभी अपने शिष्य के संशय का छेदन कर पाएगा। जब शास्त्र का अच्छा ज्ञान नहीं है तो अपने शिष्य के संशय का छेदन वह नहीं कर पाएगा। तो प्रथम योग्यता है कि उसे वेद शास्त्र में निष्णात होना चाहिए, उसका विद्वान होना चाहिए। और एक प्रश्न होगा, ये तो जो बहुत अच्छा से शास्त्र जानता है तो उसको गुरु बना लेना चाहिए ना, केवल शास्त्र की जानकारी ही पर्याप्त नहीं है, शब्द ब्रह्म में भी उसको निष्णात होना चाहिए और पर ब्रह्म में भी निष्णात होना चाहिए। मतलब श्रवण कीर्तन में भी, भगवान के भक्ति में भी उसको निष्णात होना चाहिए, भगवान का अनुभव होना चाहिए। अरे भक्ति में निष्णात है, भगवान का अनुभव किया है, ये पता कैसे चलेगा। तो कह रहे हैं कि उपसमाश्रय, यदि भक्ति में निष्णात है एक्सपर्ट दक्ष डूबा हुआ, स्नात स्नान शब्द से है, स्नातक कहते हैं जो स्नान करता है, और निष्णात मतलब खूब अच्छा से जो स्नान कर लिया है, खूब डुबकी मार लिया है, तो उसको निष्णात कहा जाएगा। खूब डुबकी लगाया है, तो इसका लक्षण क्या है कि उपसमाश्रय, उसकी इंद्रियां शांत होंगी। जो भगवान का अनुभव कर लिया है तो उसकी इंद्रियां भोग के प्रति ललायित नहीं रहेंगे। यह गुरु की योग्यता है। अब इसी को श्रील प्रभुपाद जी निषेध मुख से कह रहे हैं कि अब गुरु के नाम पर किसी मूर्ख व्यक्ति को नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको वेद शास्त्र का जानकार होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वेद शास्त्र क्या निर्देश दे रहा है, और उसका चरित्र संदेहास्पद नहीं होना चाहिए, और भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करने वाला, भक्ति के सिद्धांतों का पालन करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति के सिद्धांत का वो पालन नहीं कर रहा है, उसको गुरु बनाना चाहिए, और इंद्रियों पर उसको नियंत्रण होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कोई भाग्यशाली योग्य गुरु का शरणागति स्वीकार कर लिया तो समझिए कि बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बन गया। प्रमाणिक गुरु स्वीकार कर लिया, योग्य गुरु स्वीकार कर लिया, तब उसको मुक्त होना ही है। मुक्ति के पथ पर वे पैर रख दिया, चलना प्रारंभ कर दिया। तो यह प्रथम भक्ति है, गुरु का आश्रय लेना। लेकिन इसमें दो चीज है कि जानकारी चाहिए, शिष्य की क्या योग्यता है और गुरु की क्या योग्यता है। तो आश्रय लेकर के करना क्या होता है, तो दूसरी भक्ति है कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, गुरु से दीक्षा लेकर के शिक्षा ग्रहण करना होता है। दीक्षा लेने से काम पूरा नहीं हो गया, दीक्षा लिए और इसके बाद सीखना होता है। कोई नहीं पूछ रहा है क्या सीखना होता है, सब जानते हैं। भागवत धर्म की शिक्षा लेनी होती है। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु गुरुवात्म दैवतः अमाया निवृत्त्या यस्तुस्येत आत्म प्रदो हरि। गुरु से सीखना होता है, लेकिन गुरु से सीखने की सबसे अच्छी विधि है कि गुरु की सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। सेवा करनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, और सेवा अमाया निष्कपट सेवा करनी चाहिए। मतलब सेवा के लिए सेवा, गुरु के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, गुरु आत्म दैवत, गुरु बहुत प्रिय होना चाहिए और पूज्य होना चाहिए। केवल प्रिय होने से तो अपराध होने लगेगा, दोस्त जैसा मजाक करने लगेंगे। तो दो भाव होना चाहिए, बहुत प्रिय होना चाहिए और पूज्य भी होना चाहिए। केवल पूज्य है तो नजदीक जाएंगे ही नहीं। तो प्रिय भी होना चाहिए। कोई कोई चीज है कि बहुत नजदीक जाने पर भी खतरा है और बहुत दूर रहने से भी लाभ नहीं होता है। अब हमें इस समय तो याद नहीं आ रहा है, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बहुत बोलते थे, मध्य के न सेवेत, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, बहुत दूर है तो न सिद्ध, सिद्धि नहीं मिलती है, और बहुत नजदीक हो गए तो नष्ट हो जाएंगे। तो मध्य के न सेवेत, बीच से सेवन करना चाहिए। किसका किसका? अग्नि, राजा आए, श्लोक बोलिए, अग्नि वहिनी गुरु और स्त्री, स्त्री का, अग्नि का, गुरु का और राजा का बीच से सेवन करना चाहिए। बहुत नजदीक जाएंगे तो अनर्थ होगा, और बहुत दूर रहेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो प्रिय दैवत, गुरु बहुत प्रिय भी होना चाहिए, पूज्य भी होना चाहिए, और सेवा अमाया, निष्कपट सेवा के लिए, सेवा दिखावा के लिए नहीं। कुछ लोग सेवा करते हैं लेकिन दिखावा के लिए। यदि निष्कपट सेवा करते हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं गुरु की, और प्रसन्न हो जाएंगे भगवान, और भगवान कैसे आत्म दो, भगवान का स्वरूप है कि अपने को प्रदान कर देते। बलि महाराज को जैसे दे दिए, द्वारपाल बन गए, तो अपने को जो प्रदान करने वाले भगवान हैं, तो गुरु की निष्कपट सेवा से वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दूसरी भक्ति है कि दीक्षा लेकर के भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। लंबा लिस्ट है, आदौ मनसो संगम, सबसे पहले अनासक्ति सीखना चाहिए, वस्त्र पहनना सीखना चाहिए, श्रवण कीर्तन सीखना चाहिए, कई एक चीज है सीखने का। और भक्ति का दूसरा अंग है कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, और इसमें विशेष बात ध्यान देने की है कि गुरु को प्रसन्न करने की मनोवृत्ति रहेगी तो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त रहेगा। इसलिए सदैव कोशिश करना चाहिए कि गुरु को प्रसन्न करें, ऐसा करेंगे तो आपका ज्ञान का मार्ग प्रशस्त रहेगा, कोई विघ्न नहीं आएगा। और तीसरी भक्ति है विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना। आचार्यम माम बिजानियात नाव मन्नेत कर ही चेत न मर्त बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मयो हरि। सर्वदेवमय है, सब तरह से पूज्य है गुरु, और गुरु को भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए, यह भगवान का ही प्रतिनिधि समझना चाहिए, और इसलिए नाव मन्नेत कर ही चित, किसी भी स्थिति में गुरु के अवहेलना नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, और गुरु में कभी दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। अरे वो भगवान के प्रतिनिधि है, ये भगवान के ही रूप है, लेकिन है तो मनुष्य शरीर में ना, तो मनुष्य शरीर में है तो शरीर का धर्म भी आता है। गुरु में रोग देखा जा सकता है, बुढ़ापा देखा जा सकता है, ये तो भगवान का धर्म नहीं है ना। लेकिन न मर्त बुद्धि असूये, तो दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए, सदा सर्वदा गुरु के प्रति सम्मान की भावना रहनी चाहिए। यह विश्रम्भेण गुरु सेवा, सबसे पहले निषेध मुख से कह रहे हैं कि अपमान नहीं करना चाहिए, और जो जिसका स्तर है उसके अनुसार सेवा करना चाहिए, यह भक्ति है। कभी कभी गुरु के लोग सेवा करते हैं, लेकिन जो प्रशस्त मार्ग है, जो उचित विधि है, उसके अनुसार नहीं। जाड़ा का दिन है, गुरु जी को चादर दे दिए, लेकिन कहते क्या है, गुरु जी आप ओढ़िएगा। एक संत कह रहे थे कि वस्तु तो दे देते हैं, लेकिन आनर बुक अपने पास रखते हैं। एक होता है ना, गाड़ी वाड़ी देते हैं तो ऑनर बुक होता है ना। देखिए वस्तु तो दे दिए गुरु जी के, लेकिन ऑनर बुक अपने पास। अरे गुरु को दे दिए, उसकी जो इच्छा अपने उसका यूज करे, या आवश्यकता समझ करके दूसरे को दे दे। गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब सिद्धांत और विस्तार पर आप लोग खुद विचार कर लीजिए। सिद्धांत है कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब कौन कैसे सेवा करेगा, अब ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये 10 प्रवृत्ति के प्रथम 3 भक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा क्या है, चलिए ग्रंथ खोलिए। कौन, 7वें अध्याय में है ना, है? हाँ 7। साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। पूर्णानंदी माइक दे दीजिए, पढ़ो।
हरे कृष्णा। साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। इस स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती।
ठीक, तो अब आप लोग भी पढ़ रहे हैं ना, बोलिए क्या कहा गया इसमें। केशव बोलो, आए? अभी ढूंढ नहीं पाए, पीछे चल रहे हैं। तो पहले सब लोग ढूंढ लीजिए। अभी ढूंढ लिए सब लोग, फिर से इसी को पढ़ो।
स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती।
भक्तों को क्या सलाह दी गई है स्कंद पुराण में? मैं एक व्यक्ति बोलिए, दूसरे लोग बोलिए। हाँ, सलाह दी गई है कि उसको पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करना चाहिए। क्या सलाह दी गई है? पूर्व आचार्यों का अनुगमन करने का। तो इससे क्या लाभ होगा? उससे वांछित फल प्राप्त हो जाएगा। और क्या लाभ होगा? शोक और घबराहट का अवकाश नहीं रहेगा। कौन कौन भागवत वक्ता है? इस आशय का श्लोक बतलाइए भागवत से। पृथ्वी देवी की सुंदर उक्ति है इस विषय में। पृथ्वी महाराज जब क्रोध में थे और पृथ्वी पर बाण चला दिए, बाण चलाने के लिए उद्यत हो गए, पृथ्वी तो एकदम कांपने लगी, गाय का रूप बना करके भागी। और उनके अब भाग रहे थे जान बचाने के लिए, लेकिन ये पीछे से दौड़े जा रहे हैं, उसको ऐसा लगा कि अब तो भागने से जान नहीं बचेगा, ये तो मृत्यु के समान हमारे पीछे पड़ गए। वो तो एकदम कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह अपने को थोड़ा स्थिर करके स्तुति करने लगी। अरे क्या भगवान है, ये जो माया बद्ध जीवों की वृत्ति है क्रोध, वो कैसे आप में आ गया? ये भगवान में तो शुद्ध सत्व विग्रह है, ये क्रोध इत्यादि नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है तो कुछ प्रयोजन होगा। लेकिन स्तुति करने से भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और फिर कहने लगे कि अरे पालन के लिए आप स्थित हुए हैं, तो मैं भी तो आपकी प्रजा हूं ना, हमारे पालन के विषय में भी सोचिए, हमको क्यों वध कर रहे हैं? प्रजा के पालन के लिए ऋषि लोग अभिषिक्त किए हैं और हमारा वध कर रहे हैं। और थोड़ा विचार कीजिए कि पालन के लिए जब आप नियुक्त किए गए हैं तो हमारा वध करके प्रजा का पालन कैसे करेंगे? अरे सबसे तो पहला प्रश्न है कि प्रजा को धारण कहाँ करेंगे, कहाँ रखेंगे? और इतने क्रोध में थे, कहे कि तुम्हारा वध करूंगा और प्रजा के रक्षा की बात करो, अपने जोग बल से मैं प्रजा को धारण करूंगा। अब फिर स्तुति करने लगे, कहे कि थोड़ा सा क्रोध अपना शांत कीजिए और हमारी बात को एक बार सुन लीजिए, निबोधा गदितम में एक बार हमारी बात को सुन लीजिए, क्योंकि सर्वतः सार मादत्त बुधो मधुकरो यथा। जो विद्वान व्यक्ति है तो उचित बात को कहीं से ग्रहण कर लेते हैं, जैसे भौंरा है तो किसी भी फूल से वो रस ले लेता है, तो उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति है तो कहीं से उचित बात को ग्रहण कर लेता है। उचित बात कोई बोले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए ना। अब कोई दुष्ट व्यक्ति कहे कि मैं सूर्योदय पूरब में होता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो पृथ्वी कह रही है कि हमारी बात को एक बार सुन लीजिए, और उसी क्रम में कह रही है कि देखिए, चाहे इस लोक में कुछ प्राप्त करना चाहता है कोई व्यक्ति या दूसरे लोक में, ऋषियों ने पहले से ही कुछ उपाय बनाया है, और जो व्यक्ति उस उपाय का अवलंबन करता है तो अपने उपेय को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति पहले द्वारा स्थापित उपाय का अवहेलना करता है तो अब वह अपने लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त करता है, और साधन काल में भी उसको बहुत कठिनाई होती है। और इसलिए हमारी बात को आप एक बार सुन लीजिए। जब ऐसे कहने लगे तो अब पृथु महाराज थोड़ा उसकी बात सुनने लगे, तो कह रहे कि अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनभिष तत्व दर से भी दृष्टा जोगा प्रयुक्ता पुंसम श्रेय प्रसिद्ध है। व्यक्ति के श्रेय के सिद्धि के लिए पहले से उपाय निर्धारित किया गया है, चाहे इस लोक में कुछ फल प्राप्त करना चाहता है परलोक में, और ऋषि लोग उसका प्रयोग भी कर लिए, दृष्टा जोगा प्रयुक्ताश्च, केवल अनुसंधान नहीं किए हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर लिए हैं। तो ताना तिष्ठत यह सम्यक उपायन पूर्व दर्शितान अवर श्रद्धयोपेतान अवर श्रद्धयो पे तो उपायन बिंदते, जैसा कमजोर व्यक्ति भी है और पहले के ऋषियों द्वारा स्थापित उपाय का अवलंबन करता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और ताना अनादृत्य उन उपायों का कोई अनादर करके और विद्वान अर्थ न रहते स्वयं, भले ही वो विद्वान व्यक्ति है और अपना अब उपाय बनाने लगता है, तो कह रहे हैं कि तस्य व्यभिचरन्ति अर्थ आरब्धश्च पुनः पुनः। अब उसको बहुत कठिनाई होती है और हो सकता है कि लक्ष्य को भी न प्राप्त करे, तो इसी से सुगमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पहले के आचार्य लोग मार्ग स्थापित किए हैं तो उसी का अवलंबन करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे और कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, शोक का अवसर नहीं होगा, मन उद्विग्न नहीं होगा। नहीं तो विफलता मिलने से या कठिनाई आने से मन में भी उद्वेग होता है, शोक से भर जाता है। ठीक है, सिद्धांत और विस्तार का क्या मतलब है, इस पर कभी चर्चा हुई है? देश काल के अनुसार सब चीज बदल ही जाता है। देश और काल के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप ये प्रश्न किए कि देश काल के अनुसार बदलता नहीं है, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि देश काल के अनुसार सब कुछ बदल ही जाता है। मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, कहां का नहीं मिलता है आपसे? माइक दीजिए, बेस्ट का। ठीक है, वहां का जो लिटरेचर का सिद्धांत है, साहित्य के जो वहां समीक्षा लोग किए हैं और यहां समीक्षा के, उसमें कोई मेल नहीं है। स्त्री के स्वभाव में, वहां की स्त्री में जो स्वभाव है और भारत की स्त्री में कोई मेल नहीं है। पुरुष का जो स्वभाव है वहां और यहां, उसमें कोई मेल नहीं है। यहाँ के पुरुष मरते हैं, बेस्ट के पुरुष नहीं मरते हैं। एकदम कोई मेल नहीं है ना। यहाँ के लोग भोजन करते हैं, वहां के लोग नहीं भोजन करते हैं। यहाँ के लोग जो छह विकार है उसे ग्रसित हैं, वहां के लोग कोई नहीं है। थोड़ा उत्तर दीजिए, माइक दे दीजिए उनको।
ये सब तो सेम है, बेसिक चीजें हैं, सब मनुष्य में स्त्रियों में एक जैसे हैं।
एक जैसे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी को भगवत प्राप्ति करनी है, तो यहाँ के लोग तो जप करके, भगवान का नाम लेकर के भगवान की प्राप्ति करेंगे, और अमेरिका के लोग किस साधन से करेंगे? अमेरिका के लोगों के लिए तो यह काम नहीं करेगा ना, वहां भी काम करेगा भगवान का नाम, वो तो वेस्ट है। ईस्ट का साधन वेस्ट में भी काम करेगा। बोलिए आप लोग माता जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, कुछ कुछ चीज परिवर्तित होता है, लेकिन बहुत चीज है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शीत घाम का अनुभव वहां के लोग भी करते हैं, यहां के लोग भी करते हैं। आप तो लेट आई, प्रेम करने की प्रवृत्ति यहां के लोगों में भी है, वहां के लोगों में भी है। और मनुष्य की बात तो दूर है, पशु पक्षी में भी, बाघ जैसा हिंसक प्राणी में भी है। तो कई एक चीज है जो सब जगह है, कुछ कुछ चीज है परिवर्तित होता है। भारत में स्वर्ग जाने का मार्ग यज्ञ है, तो अमेरिका के लोग विमान से नहीं चले जाएंगे स्वर्ग में, वहां के लिए दूसरा रास्ता है। बिना पुण्य के यहां पुण्य करने से लोग स्वर्ग में जाएंगे, देश में पाप करने से लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब हिरण्यकश्यपु का राज आ जाएगा तब ऐसा होगा। तो जो सत्पुरुष का मार्ग निर्धारित किए हैं तो उसी मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। तो आगे पढ़िए।
ब्रह्मी अमल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी, उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतया सहजिया कहलाते हैं।
ठीक, रुक जाओ। सहजिया किसको कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी, उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि कौन बोल रहा है, बोलिए पूरा श्लोक बोलिए। श्रुति स्मृति उत्पाताय एव कल्पते। वेद शास्त्र की अवहेलना करके कोई खूब अच्छा से लगता है कि केवल भक्ति ही कर रहा है, लेकिन वह भी उत्पात खड़ा कर देता है। अरे भाई, वेद शास्त्र की आज्ञा का वह पालन ही नहीं कर रहा है तो एकांतिक भक्ति कैसे हो जाएगा? वो भक्ति नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है, देखने में लगता है कि बहुत महान कार्य है, लेकिन फिर भी वह ग्रहण करने लायक नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध कितना सुंदर उपदेश दिए, अहिंसा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बुद्ध के मार्ग अवलंबन करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेद शास्त्र पर आधारित नहीं है। तो साधु पुरुष के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उसकी जिज्ञासा करते हैं उसी मार्ग का जो वेद शास्त्र पर आधारित है, प्रमाण वेद है। कभी कभी देखने में लगता है कि बहुत एकांतिक भक्ति है, लेकिन वेद शास्त्र पर आधारित नहीं है तो ग्राह्य नहीं है। अरे आदमी की बात तो दूर है, भगवान बुद्ध तो भगवान है ना, लेकिन अब वेद शास्त्र के विरुद्ध है कोई बात है तो भले ही भगवान बोल रहे हैं लेकिन वह ग्राह्य नहीं है। देखिए ये वैधिक भक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, यहां हम लोग वैधिक भक्ति की बात कर रहे हैं। गोवर्धन धारण की लीला है तो रागानुगा भक्ति भी नहीं है, कौन भक्ति है, रागात्मिका भक्ति है। तो रागात्मिका भक्ति में किसी साधारण जीव का अधिकार नहीं है, वह तो रिजर्व है ब्रजवासियों के लिए। हाँ वो भी सार्वभौम रूप से स्वीकार करने लायक नहीं है, वो तो नंद बाबा तो पुत्र के स्नेह में पड़ करके अब उसकी बात को स्वीकार कर लिए। मुझे केवल वही बात नहीं, प्रकट गिरिराज जी की महिमा तो थी ना, गिरिराज जी पूज्य हैं इसलिए उसको स्वीकार कर लिए। तो वेद शास्त्र मूल चीज है, इसके अनुसरण जो साधु पुरुष कर रहे हैं तो उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कोई कोई वेद शास्त्र का अवहेलना करके और अपने से कुछ पंथ बना देते हैं, देखने में बहुत रोचक लग सकता है लेकिन फिर भी वो ग्रहण करने लायक नहीं है। वो ग्रहण करने लायक नहीं है। वैष्णवों में जो एक ग्रुप है सहजिया, उसको कहते हैं सहजिया का अर्थ यही है कि किसी बात को बहुत सस्ता ग्रहण कर लेते हैं। अब वो रागात्मिका भक्ति को भी बहुत सस्ता समझेंगे, तो इस अर्थ में वे सहजिया है। ठीक, और आगे पढ़िए, आगे पढ़िए।
ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज या सस्ता समझ रखा है, जिनके अपने मन गणित मनोरथ है और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते, विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बोध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतएव उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बढ़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतएव जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकतावाद नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं।
आगे वाला पैराग्राफ ही पढ़े।
यद्यपि श्रीमद् भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ है, अतएव उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा कि यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें, और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाएं।
ठीक, इस विषय में किसी कुछ पूछना है? सद्धर्म परीक्षा बौद्ध या वेद शास्त्र की प्रामाणिकता? हाँ बोलिए। सम्राट अशोक का कब टाइम है? इतिहास के हैं कोई? इसको बाद में देख करके बतलाया जाएगा। ठीक है, धारणा नहीं है। कैसा समझेंगे? हाँ
उन लोग को हम लोग कैसा समझेंगे?
जैसा है वैसा समझेंगे। नास्तिक है, नास्तिक समझेंगे।
मैंने बहुत सारे देश है तो हाँ। सब लोग नास्तिक
जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो नास्तिक हैं।
नास्तिक बोलने से भी उन लोग हम लोग को नास्तिक समझते हैं। कृष्ण को मानने वाला उन लोग धर्म नहीं जानने वाला समझते हैं। इसमें क्या
मैं आपका प्रश्न नहीं समझ रहा हूँ, फिर से बोलिए।
अच्छा, हम लोग जो सनातन धर्म मानने वाला को उन लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते।
देखिए, प्रसन्नता और अप्रसन्न, उसको पसंद करने और ना पसंद करने की बात नहीं है और न सनातन धर्म की बात है। आप फिलॉसफी का ग्रंथ पढ़ेंगे तो आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। तो चार्वाक, बौद्ध, जैन ये नास्तिक है। ये आस्तिक और नास्तिक का विभाजन वेद के मान्यता से होता है। जो वेद के सिद्धांत को मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं और जो वेद के सिद्धांत को नहीं मानते हैं उसको नास्तिक कहते हैं। बौद्ध लोग वेद का सिद्धांत नहीं मानते, वेद का विरोध करने के लिए ही भगवान बुद्ध का अवतार ही हुआ, तो ये नास्तिक हैं। अच्छा, यहां तक बौद्ध के भगवान बुद्ध के अनुयायियों की बात है तो भगवान बुद्ध तो अवतार लिए हिंसा को रोकने के लिए। अहिंसा उनका परम धर्म है। लेकिन अब आज तो हम सबके विषय में नहीं कह सकते, अधिकांश बौद्ध तो ऐसे हैं कि कुछ भी खा लेते हैं, मांस मछली कुछ भी दे दीजिए। यद्यपि वो भिक्षु हैं, मैं बर्मा गया था, बहुत वहाँ बहुत भिक्षु हैं और बहुत धर्म का बहुत वहाँ सम्मान है, और उन्हीं लोगों के चलते कुछ हम लोगों को भी लाभ मिल जाता है। बर्मा में या थाईलैंड में ये गेरुआ वस्त्र को आगे सीट देते हैं प्लेन में या बस में। लेकिन ये लोग नास्तिक हैं, अतिशय गंदा है, सब तरह से अपवित्र है। क्या करते हैं
बौद्धिक जन साधु संतों को बहुत मान मर्यादा करते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मंदिर ऐसा बनाया है। ये समाज में
बहुत सम्मान करते हैं। बर्मा में ये ड्रेस पहन करके चले जाइए तो वीसा मिलना भी कठिन हो जाता है कभी कभी, यही बहुत सम्मान है।
नहीं नहीं, वहाँ के लोग उनको सभी संतों को नहीं, इस देश में तो हम लोग को भी सम्मान करते हैं वहाँ के।
यहाँ के जितने टीचर जाते हैं ना, उनको कहा जाता है कि पैंट शर्ट पहन करके आइए।
नहीं, वो तो गवर्नमेंट के सरकारी लोग कहते हैं।
तो गवर्नमेंट तो बहुत सरकार के संरक्षा की है ना, ये सब नियम बौद्ध धर्म के संरक्षण में ही लगाया गया है ना।
तो मतलब बहुत सारे देश है, मतलब चीन है, जापान है, थाई है।
हाँ ठीक है, अब तो हमें बहुत देश का जानकारी नहीं है, लेकिन चीन में तो सुनते हैं कि एक भी पशु रह ही नहीं गए। ये कौन धर्म है? ये अच्छी बात है सब पशुओं को मार करके खा जाना। सुनते हैं कि चीन में कोई पशु है ही नहीं, वो छिपकली को भी मार करके खा जाते हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए माइक है, आगे पढ़िए आप। पढ़िए। क्या नहीं आई? अरे भैया, कृष्ण भक्ति के लिए पहला नियम ही बतलाते हैं ना, नो मीट ईटिंग। यही आप लोग बोलते हैं ना, तो वेद का विरोध इसीलिए कर रहे थे ना कि पहले हिंसा रोको। हाँ आए हाँ ठीक है, इन उसके पहले प्रभुपाद जी लिखते हुए इसको लिखे हैं ना, उसके पहले लिखे हैं ना कि ऐसी मान्यता हो गई थी कि वेद शास्त्र ही विधान कर रहा हिंसा करने का, तो उस धारणा को हटाने के लिए वो वेद का ही विरोध करने लगे। तो नो मिटिटी, ये पहला आइटम है भक्ति के लिए ना। आप लोग भी तो प्रीचिंग में यही बोलते हैं ना। चलिए ठीक है, लेकिन इसको अंग्रेजी से पढ़ करके देखना होगा। चलिए आगे पढ़िए।
शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदीय पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना।
मैं एक कौन पढ़ रहे हैं, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा।
कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना,
ये तो अलग है। शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा, ये भक्ति का अंग है कि धर्म के विषय में पूछना चाहिए। अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यत एसाम अभिप्सितः सद्धर्मस्यावबोधाय जेषां निर्बंधनी मति। जिसको हट है, हट समझ रहे हैं कि हमको धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है, सद्धर्म क्या है, इसके जिज्ञासा में जिसकी निर्बंधनी मति है, मतलब हट पकड़ा है, तो अचिराद एव सर्वार्थ सिद्ध्यति, उसका शीघ्र ही सब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। तो सब धर्म के जिज्ञासा करना, धर्म के विषय में पूछना, ये भक्ति का अंग है। हाँ आगे पढ़िए।
पद्म पुराण में उल्लेख है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए,
उसके पहले से थोड़ा सा पढ़िए, क्लाइंट ऊपर से।
नारदीय पुराण में कहा
गया है, उसके नीचे
कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना।
एक्चुअली इसको बोल्ड लाइन में लिखना चाहिए, बोल्ड अक्षर में। कृष्ण के तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना, ये भक्ति का अंग है। कृष्णार्थे भोगादि त्याग, में भोग का त्याग करने से क्या लाभ होता है, पढ़िए पद्म पुराण क्या कह रहा है।
जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा।
यहाँ भोग का त्याग करेंगे किस लिए, भोग का त्याग क्यों करेंगे, कृष्णस्य हेतवे, कृष्ण के हेतु के लिए। इसका अर्थ है कि भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के कृपा के लिए भोग का त्याग करना। जो व्यक्ति भोग का त्याग करता है तो उसे भगवान प्रसन्न होते हैं। कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है कि भक्ति कर रहे हैं तो इसमें भोग का क्या त्याग करना है, इसे क्या लाभ होगा। भोग का त्याग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या का यही अर्थ है कि भोग से दूर रहने से आशुतुष्य जनार्दन, भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह पद्म पुराण की उक्ति है कि जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, तो उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विष्णु लोक के स्थिता संपद अलोला सा प्रतीक्षते, भगवान के प्रसन्नता के लिए जो व्यक्ति यहाँ के भोग का त्याग करता है भगवान के लोक का ऐश्वर्य, उसके विषय में कह रहे हैं संपद अलोला। यहाँ का जो संपद है लोल है, लोल मतलब चंचल। यहाँ देखा जाता है कि किसी के पास धन है ऐश्वर्य तब तक खत्म हो जाता है, पद है मुख्यमंत्री का पद है प्रधानमंत्री का पद है तब तक खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान के लोक के संपदा को अलोला, वह स्थिर है चंचल नहीं है, तो वह संपदा उसकी प्रतीक्षा करती। मतलब जो व्यक्ति यहाँ भोग का त्याग करेगा भगवान की कृपा से उसको भगवान का धाम मिल जाएगा, वैकुंठ लोग मिल जाएगा। तो भोग का त्याग करना एक भक्ति है। और आगे
तीर्थ स्थान में निवास, स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है वह वैकुंठ लोकों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति यानी नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है।
मूल में हम लोग क्या कल पढ़े थे, द्वारकादौ निवास गंगादे सन्निधेरपि, भक्ति का एक अंग है द्वारका आदि तीर्थ में निवास करना। तो इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 6 महीना 1 महीना या आधा महीना, यही है ना, पखवाड़ा मतलब आधा महीना ही हुआ ना, तो वह वैकुंठ लोक को जाता है और भगवान का रूप भी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं 6 महीना 1 महीना आधा महीना? अब जिसका जितना चित्त गंदा है उसके अनुसार कुछ अधिक निवास करना पड़ेगा। मन बहुत गंदा है तो 6 महीना, कुछ कम गंदा है तो 1 महीना, और कम गंदा है तो आधा महीना में भगवान के धाम को प्राप्त कर जाए। तीर्थ में निवास करना ये भगवान की भक्ति है। द्वारका दौ, द्वारका आदि, तो आदि से जगन्नाथपुरी को ग्रहण किया गया है। चलिए पढ़िए आगे क्या है उसी में।
ब्रह्म,
हाँ पढ़िए ठीक।
ब्रह्म पुराण में कहा गया है पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है के दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं।
क्या मतलब हुआ? जो जगन्नाथपुरी में निवास करता है तो देवता लोगों को यही लगता है कि तो भगवान के पार्षद हैं, मतलब पार्षद दत्त तो मिल जाएगा। हाँ वो श्रीनिवास कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं?
कुछ करना ही पड़ेगा।
क्या कठिनाई? तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ कठिन व्यवस्था दिया जाए? इतनी आसान व्यवस्था दी गई है, फिर भी कितने लोग वहां निवास करते हैं? द्वारका को नहीं, दिल्ली द्वारका क्या? देखिए, इस विषय पर बाद में चर्चा होगी। आपका जो प्रश्न का गर्व है तो उस पर चर्चा बाद में होगी, इसी में आया है। आपको कुछ डाउट लग रहा है? कुछ लोग जाते हैं ना, कुछ लोग जाते हैं, लेकिन एक पखवाड़े के लिए भी नहीं जाते हैं। कुछ लोग वहां निवास करते हैं। भगवान के धाम में वास करने से भगवान का धाम मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब लोग चले जाते हैं। अयोध्या के सारे निवासी वैकुंठ चले गए। प्रहलाद महाराज जब इस ब्रह्मांड में थे तो भगवान से प्रार्थना किए, सब पूरा ब्रह्मांड ही मुक्त हो गया। भक्ति का साधन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में चले जाता है। देखिए, सिद्धांत समझना चाहिए। प्रश्न कर दे बहुत अच्छा, और पहले ही ये बतलाया गया है कि यह जो भक्ति का फल बतलाया जा रहा है तो ये केवल बहिर्मुख लोगों को प्रवृत्त करने के लिए। ये जो साधन भक्ति है तो अपने आप में ये संपाद्य, इसका संपादन करना चाहिए। इसका कोई फल नहीं है, बाहरी फल नहीं है। पहले ही सुने ना, साधन भक्ति का मतलब ही है कि भाव भक्ति को प्राप्त करना। ये जो फल की चर्चा की जा रही है तो ये तो थोड़ा लोभ देने के लिए कि उस भक्ति में व्यक्ति प्रवृत्त हो। जैसे एकादशी का व्रत करना वो नित्य धर्म है, व्रत करना ही चाहिए, लेकिन एकादशी में प्रवृत्त करने के लिए कभी कभी एकादशी महात्मा की कथा करने लगते हैं। तो उसी प्रकार जो भी हम लोग साधन भक्ति की चर्चा कर रहे हैं तो ये तो करना ही चाहिए, केवल थोड़ा प्रवृत्ति लोगों की आ जाए इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तो अब आप जा करके आगरा वालों को प्रेरित कीजिए कि सब नहीं तो कम से कम आगरा वाले सब जा करके द्वारका में वास करें। और भगवान के धाम में चले जाएं, और वहां तो 6 महीने रहना पड़ेगा, वो दूर भी है। उधर से केवल ये बात पार कर जाए आगरा से, तो इधर तो एक दो दिन में ही काम बन जाएगा। लेकिन अब दुनिया की बात छोड़िए, आगरा वालों को सब को वृंदावन पहुंचा दीजिए। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न खड़ा होगा, होता ही रहता है, वास्तव में ऐसा हो जाता है। बुखार की दवा कई एक है, बुखार के कुछ दवा है ना, हमको तो मेडिकल का ज्ञान नहीं है, वो तो कई एक दवा है, लेकिन एक ही दवा सौ पेशेंट पर कारगर हो जाए यह कोई जरूरी नहीं है। देखते हैं ना, कोई एक दवा है, एक व्यक्ति को दिया जाता है, वो तीन टैबलेट खाया बुखार से पूरा ठीक, डॉक्टर वही है दूसरे व्यक्ति को तीन टैबलेट क्या तीन करके नौ टैबलेट खिलाया, लेकिन फिर भी बुखार पर कोई असर ही नहीं, फिर दूसरा दवा देता है। तो मान लीजिए कि जो कंपनी दवा बनाई है उसको बैन करेंगे, उसमें बुखार उतारने की शक्ति है कि नहीं है ना भाई? एक आदमी का भी बुखार उतर रहा है तो शक्ति है बुखार उतारने के लिए ना। तो उसी प्रकार ये जो भक्ति के महात्म को सुन रहे हैं, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि सब पर यह घटित होगा, लेकिन मान लीजिए कि 90% लोगों पर भी घटित हुआ गया तो इसको सत्य ही माना जाएगा ना, भक्ति की शक्ति मानी जाएगी ना। 50% लोगों पर भी घटित हो फिर भी इसकी शक्ति मानी, एक व्यक्ति पर भी घटित हो तो फिर भी शक्ति तो मानी जाएगी ना। तो ये सब साधन भक्ति का वर्णन करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ऐसा लिखे हैं कि आवश्यक नहीं है कि सब व्यक्ति के साथ एक साथ ही घटित हो, एक जैसा ही घटित हो। कैंडिडेट्स पर कुछ कुछ अंतर हो जाता है, देख रहे हैं, 6 महीना, 1 महीना और 1 पखवाड़ा, तो कैंडिडेट को देख करके कहा जा रहा है। तो उसी तरह ये जो भक्ति की महिमा हम लोग पढ़ते चलेंगे, तो शक्ति है ऐसा होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सब पर एक जैसा हो ही जाएगा। इसको साधन भक्ति के वर्णन के बाद इस पर चर्चा है, तो बात आएगी तो वहां हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो एक भक्ति है तीर्थ में निवास करना, ओरिजिनल शब्द है द्वारका आदि, जगन्नाथपुरी को ग्रहण किए और गंगादे सन्निधे रपी, या गंगा आदि, गंगा जैसे किसी पवित्र नदी के तट पर या सरोवर पर रह रहे हैं, यह भी भक्ति का अंग है। और पहले ही हम लोग सुने कि प्रारंभ रूपता और भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, तो तीर्थ में निवास करना ये भक्ति में सहयोगी है। तीर्थ में निवास करके जितना अच्छा से भक्ति करेंगे घर में या अपने शहर में रह करके, उतना अच्छा से भक्ति का संपादन नहीं कर पाएंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, अब आगे जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना चाहिए। पढ़िए कोई दूसरा।
जब नवाचार्य ने मैं नारदी पुराण, जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना, नारदी पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से उत्पन्न न संपन्न न किया जा सके। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1,00,000 बार जप किया जाए, किंतु यदि यह संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यता हम अपने शिष्य को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए, किंतु यदि कोई 16 माला का जप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि इसे अगले दिन पूरा करे। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो अवश्य ही परमात्मा का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति के में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो, इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा।
ठीक, तो भक्ति का एक अंग है जाव दर्थान वर्तित। इसका दो स्तर पर व्याख्या है। जितना से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही संसाधन रखना चाहिए। बहुत अधिक रखेंगे फिर भी भक्ति में बाधा आएगी, और कम रखेंगे फिर भी भक्ति में बाधा आएगी। तो भक्ति संपादन के लिए जितना आवश्यक हो उतना संग्रह करना चाहिए। जितना से भक्ति ठीक से चल सके उतने में ही निर्वाह कर लेना चाहिए। बहुत बहुत सामान नहीं जुटाना चाहिए। बहुत सामान जुटा देंगे तो उसको झाड़ने पोछने बनवाने बहुत समय निकल जाएगा, और बहुत वैराग्य दिखाएंगे, गर्मी आया तो सब स्वेटर पोइटर फेंक दिए तो मंगला आरती नहीं आ पाएंगे। जाड़ा आने गर्मी आया तो सब फेंक दिए तो अब जाड़ा आने पर तो मंगला आरती में नहीं आ पाएंगे ना। तो भक्ति के लिए जितना आवश्यक है उसको स्वीकार करना चाहिए। अधिक भी करने से बाधा आती है, कम करने से भी। एक स्तर का यह व्याख्या। और दूसरी व्याख्या है कि भक्ति के नियमों को भी उतना को ही स्वीकार करना चाहिए जितना आप ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। जितना कर सकते हैं उससे कम नहीं ग्रहण करना चाहिए। जितना कर सकते हैं उतना जरूर ग्रहण करना चाहिए। खास करके कई गृहस्थ भक्त लोग हैं, अपने घर में ठाकुर जी को रखते हैं तो उत्साह में आकर के 5 बार आरती का नियम रखते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाता है। तो ठाकुर जी को घर में रखे हैं तो जितनी सेवा ठीक से करते हैं उतना ही रखना चाहिए, लेकिन अब जो सेवा कर रहे हैं तो उसको करना चाहिए, और नहीं करना है तो भगवान को ज्ञापन दे देना चाहिए, छुट्टी ले लेना चाहिए। जिस टाइम पर भोग लगाते हैं, बहुत दिन भोग लगा दिए तो भगवान भी प्रतीक्षा में रहते हैं कि 9 बजे आएगा। तो 3 बार नहीं भोग लगा सकते तो 1 बार का ही नियम रखना चाहिए, भगवान उसी पर संतोष कर लेंगे। समझ रहे हैं? जाव दर्थानुवर्तिता, दो स्तर पर इसकी व्याख्या की है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उतना ही नियम लेना चाहिए कि जिसका ठीक से पालन कर सके, और बहुत अधिक नियम ले लेते हैं अब नियम पालन नहीं होता है तो एक तो व्रत भंग करने का दोष भी लगेगा, मन ग्लानि से भर जाता है। जावतर धनुवर्तित, ये भक्ति का अंग है। उपदेशामृत में भी इसकी चर्चा है। ठीक, आगे अभय सिंह बोलिए।
हरे कृष्ण। एकादशी के दिन उपवास करना। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर स्मरण करना सर्वश्रेष्ठ होता है।
तो एकादशी व्रत का क्या उद्देश्य है? शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और भक्ति में अधिक समय व्यतीत करना। एकादशी का व्रत करने से सब पाप खत्म हो जाता है और अन्न खाने से सब पाप आ जाता है। एकादशी को अन्न खाना बहुत भारी दोष है। एक बार हमको एकादशी के विषय में प्रवचन करने को कह दिया गया था और मैं कई एक श्लोक लिख करके बोल दिया। एक मुसलमान की लड़की थी, वो भक्त हो गई है। हम बाद में आकर के कह रही थी, प्रभु जी आप वर्णन कर रहे थे तो लगता था कि उल्टी हो जाएगी। अने एकदम स्पष्ट श्लोक दिया गया है, हरिभक्ति विलास में उद्धृत है। उन्हें कोई पाप बाकी नहीं है। गाय के मांस खाना, अपने माँ के साथ व्यभिचार करना, ये जितना भारी पाप है उतना भारी पाप है एकादशी को अन्न खाना। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल अन्न से भी बच जाते हैं तो एकादशी का व्रत हो जाता है। वैसे एकादशी का व्रत का मतलब है पूरा पूरा उपवास करना। हवा ले सकते हैं, जल नहीं। हवा पर रोक नहीं है, हवा के लिए छूट है, जितना लेना चाहे उतना ले लीजिए, लेकिन जल नहीं। कहेंगे तो कठिन होगा, तो ठीक है जल भी ले सकते हैं, फल नहीं है। ये भी कठिन हो रहा है तो ठीक है फल भी ले लीजिए, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आग पर पकाया हुआ नहीं। कोई कोई फल है ना कि उसको आग से पकाना होता है, जैसे आलू भी फल ही है ना, कंद फल है, तो कंद मूल फल ले सकते हैं लेकिन बिना आग के संपर्क वाला। इतना से भी नहीं होता है, दवा खाना होता है। ठीक है जो आग पर बनता है फल, या यहाँ तक कि मुन्यन कहते हैं, सामा है और कोटू और तेली का चावल है, इसको मुन्यन कहते हैं, तो इसको भी ले सकते हैं लेकिन अन्न कभी नहीं। एकादशी के विषय में बहुत बहुत भ्रांति है, खास करके स्त्रियों में प्रचलन है।
अरे तुम एकादशी भुक रही तो विधवा भुगती है ना, तू कहे को भुक रही हो। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जो स्त्री अपने पति के साथ है उसको बहुत व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन यह एकादशी के लिए नहीं लिखा गया। अभी स्त्रियों का स्वभाव है बहुत बहुत उपवास करती है, कोई कोई है कि महीना में उनका 8-10 दिन उपवास में ही चला जाता है। और बेचारे पति महोदय अपने पत्नी के भावना से प्रभावित होकर कहते तो ठीक है तुम उपवास हो तो छोड़ दो भोजन। अरे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्त्रियां ऐसे ही भोजन नहीं बनाना चाह रही है। दूसरे व्यक्ति की बात तो सुनिए, जो भक्तों की स्त्रियां हैं जाए तो संडे है। कहाँ जा रहे हैं? उधर से थोड़ा टिफिन लेते आइएगा ना। तो एक साइकोलॉजी है कि यदि वो बहुत व्रत करेंगे तो पति भी प्रभावित होंगे, इसीलिए ये शास्त्र में लिखा गया है कि जो पति के साथ स्त्री है तो उसको बहुत व्रत कर नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी सबको करना चाहिए। कोई कोई फिर पूछेंगे कि तो एकादशी बैठाना चाहिए कि नहीं? उद्यापन, उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन 88 वर्ष के बाद, 8 से 88 इसके बीच में एकादशी से छूट नहीं है। 8 वर्ष के नीचे है तो उस समय छूट मिल सकता है, और 88 तो 88 के ऊपर चले गए तो आवश्यक नहीं, ये नहीं है कि छोड़ देना है, अब उसके बाद कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन हो गया, ऑप्शनल हो गया। वो तो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो 8 से 88 के बीच में एकदम आवश्यक।
दशमी को एक बार अन्न लो, द्वादशी को एक बार अन्न लो, तो एक तो ये हो गया कि हमने दशमी को भी भरपेट खाया, द्वादशी को भी भरपेट खाया, एकादशी को निर्जल हो गए। और एक विधि ये होगी कि हमने दशमी को एक समय खाया, द्वादशी को एक समय, और एकादशी पे फल ले लिए, तो किस विधि का पालन करना चाहिए?
किस विधि का पालन करना चाहिए तो करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। यदि कर सकते हैं निर्जला व्रत करना है तो निर्जला व्रत तभी आसानी से कर पाएंगे जब दशमी के दिन अन्न का त्याग करेंगे, मैंने संध्या के समय एक बार ले सकते हैं। सिद्धांत समझिए, व्यवहारिक चीज है, जब तक शरीर में अन्न पचा नहीं है तो जल की जरूरत पड़ती है। तो इसी से जो निर्जला एकादशी करने वाले हैं तो वे दशमी को एक टाइम दोपहर के पहले खा लिए तो अन्न पच जाता है, तो निर्जला एकादशी करने में आसानी होती है। अच्छा, अब जो निर्जला एकादशी किया तो पेट इतना सूख जाता है कि अब उसको फिर से या एसिडिटी बन जाता है, तो उसको समित करने के लिए पहले गुड़ का रस और मरीच या ऐसे कुछ लिक्विड चीज देते हैं, तो ये स्वाभाविक है। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा घटित होता है कि अब लेंगे कुछ पिएंगे तो इसके बाद शौच जाना पड़ेगा, तो वो एक दो घंटा देर भी हो जाता है, तो इतना वो पाचन तंत्र सूख जाता है कि व्यवहारिक पक्ष है कि अब दोपहर तक तो ऐसे ही निकल जाता है एक बार प्रसाद लेना चाहिए। तो निर्जला व्रत करने वाले ये व्रत ऐसे ही करते हैं, लेकिन उनको लाभ होता है कि अब शरीर में रोग बहुत कम रह जाता है। एक भक्त है अखिलात्मा, वो बहुत बीमार होता था, अब इतना बीमार होता था कि गुरु का भी डांट सहना पड़ता था। वो बरसाना श्री जी के सीढ़ी पर रहता था और बार बार बीमार, लेकिन निर्जला एकादशी करने लगा तो अब बीमार नहीं होता, वो एकदम विधि से करता है। लेकिन उसकी स्थिति यह है कि एकादशी के दिन भी एकदम सामान्य जीवन जीता है, वो सेवा अपनी करता रहता है। द्वादशी के दिन उसका समय कुछ जाता है वो गुड़ का रस बनाने में, एकादशी के दिन एकदम नॉर्मल लाइफ जीता है। तो विधि का पालन करने से सुविधा होती है, और एकादशी का मतलब वही है। अब फल खा करके तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, लेकिन अब जिसकी जैसी शारीरिक क्षमता है, कुछ लोग निर्जला एकादशी कर दे तो दो चार दिन बीमार हो जाएंगे, तो उससे तो अच्छा है कि फल खा करके ही रहे, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक और है, उसको पढ़िए। वट वृक्ष को नमस्कार करना। स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आमलक आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार करे, तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। तो धात्री अश्वत्थादि गौरवम, ये दसवां आइटम है प्रारंभिक भक्ति का। धात्री कहते हैं आंवला को, और इनका सम्मान करना चाहिए। और इस विषय में एक श्लोक है कि अश्वत्थ तुलसी धात्री, स्कंद पुराण का श्लोक है। गो भूमि सुर वैष्णव पूजिता प्रणता ध्याता छपयन्ते निणाम अघम। कि पीपल का वृक्ष, तुलसी या आंवला का वृक्ष, या गाय, भूमि सूर्य, पृथ्वी के देवता। कौन है पृथ्वी के देवता? बाबा भूमि सूर्य, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण और वैष्णव, पूजिता प्रणता, इनकी पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो छपयंती निर्णाम अघम, मनुष्य का पाप खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, छीण हो जाता है। और उसमें भी खास करके गाय की सेवा करना और महत्वपूर्ण है। गवाम कंडुयनम कुरिया, गाय को सहलाना चाहिए, उनको खुजलाना चाहिए। गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, गाय को घास खिलाना या भोजन देना, ग्रास देना, रोटी इत्यादि देना। गो प्रदक्षिणम, गाय के प्रदक्षिणा करना। गोसु नित्यम प्रसन्ना सु, अब इस क्रिया से यदि गाय सुख अनुभव करती है, प्रसन्न होते हैं, तो गोपालो भी प्रसिद्धति, गाय के प्रसन्न होने से गोपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गाय की सेवा करना भी भक्ति ही है। और ये प्रारंभिक अंग है तो इसका सम्मान करना चाहिए, पीपल के वृक्ष का सम्मान करना चाहिए। वैसे तो किसी भी वृक्ष के नीचे शौच पेशाब नहीं करना चाहिए, लेकिन पीपल के नीचे तो भूल करके भी नहीं। रास्ते में आ गया नमस्कार करना चाहिए, प्रदक्षिणा कर लेना चाहिए।
तो जल देने के लिए बोल रहे हैं तो मंदिर में देखते बहुत सारे लोग जल देते हैं, तो फिर मन में शंका आती कि तुलसी जी को जल की आवश्यकता तो है नहीं, अब मैं जल दे रहा हूं तो उनको कष्ट होगा क्योंकि इतने जल की तो आवश्यकता नहीं, तो इसमें क्या करना चाहिए?
तुलसी जी की जितनी जल की आवश्यकता है उतना ही देना चाहिए ना, सेवा के नाम पर कष्ट नहीं देना चाहिए ना। ये तो मैनेजमेंट का कार्य है कि वे इस्टिमेट कर ले कि तुलसी जी को कितने जल की जरूरत है, और एक तुलसी जी के जल का पूरा हुआ तो दूसरे तुलसी जी को रिप्लेस करना चाहिए। ये तुलसी जी को कष्ट देना यह ठीक नहीं है। जब मंदिर में है तो मंदिर तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना होगा और किसी के आशय को समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी के पिताजी वृद्ध हैं तो कोई व्यक्ति उनको स्नान करा रहा है, तो बीमार हो गए फिर भी स्नान कराएगा? इतना सेंस होना चाहिए ना कि तुलसी जी को जाड़ा के दिन में कितना पानी चाहिए, गर्मी के दिन में कितना पानी चाहिए, बरसात का सीजन है तो कितना चाहिए। सेवा के विषय में सिद्धांत है यथा कालम यथा कामम, समय का और उसके इच्छा का ध्यान रखना चाहिए, ये सेवा का। तो इस प्रकार हम लोग प्राथमिक भक्ति 10 की चर्चा किए, अब जो 10 निवृत्ति है उसको हम लोग कल देखेंगे कि जाने के पहले हाजिरी बोल दीजिए। अब है प्रश्न, थोड़ा हाजिरी ले लें जिसको जाना है। अर्जुन बंधु दयालु धर्मराज ध्रुव जगत पालक केशव हरि, प्रश्न के लिए छूट है लेकिन हाजिरी के बाद कृष्ण राथिनी